इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरह मरियम को मुकम्मल करेंगे आयत नंबर एंड तक 98 तक। व यजीदुल्लाहु अल्लज़ीना इहतदौ हुदा, और अल्लाह ताला ज्यादा करता है उन लोगों को हिदायत में जिन्होंने हिदायत पाई, जिन्होंने हिदायत पा ली ना, फिर अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पे जो चल पड़ता है ना, अल्लाह ताला फिर उसकी हिदायत बढ़ाता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे उसको इल्म आता है अल्लाह की और पहचान होती है, आप देखते हैं हिदायत बढ़ती जाती है फिर, सुभान अल्लाह, बशर्ते कि वो इस रास्ते पे चलता रहे। समझ लें कि एक हाईवे है ना, हाईवे पे आप चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप, ऐसे ही मैं कह रही हूँ, मिसाल के तौर पर आप सोचिए ये हाईवे जो है ना, ये सिराते मुस्तकीम है, ठीक है, आप इसके ऊपर चलते रहेंगे ना, अल्लाह ताला हिदायत में और बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, आगे चलाता रहता है। लेकिन अगर इंसान इस रास्ते को छोड़ देगा ना, और ये सोचे कि चलो भाई ये नीचे कितना मेला ठेला लगा हुआ है, जरा मैं उतर के तो देखूं इस हाईवे से, एग्जिट ले लेता है, चलो वो मैं जरा घूम के आती हूँ नीचे से, बस वो जो वो कितना खूबसूरत सीन नजर आ रहा है, तो बताया ये दुनिया मीठी और सरसब्ज है ना ही, आप उसके वाकई वो वहां से अट्रैक्टिव नजर आती है ना, आप उतर जाते हैं, बस फिर तो लॉस्ट हो गए, उतरना नहीं है इससे, इसके ऊपर ही चलते रहेंगे तो अल्लाह हिदायत बढ़ाता जाएगा, जैसे अल्लाह की पहचान आती जाएगी और दिल खुलता जाएगा, शरह सदर होता जाएगा, हिदायत बढ़ती जाएगी। वल बाकियात सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन मरद्दा, और बाकी रहने वाली ये वाली बात, बाकियात सालिहात हम पहले कहाँ पढ़ चुके हैं, सूरह कहफ में हमने पढ़ा था ना, बाकियात सालिहात, मैंने आपको बताई भी थी नेकियां, हर तरह की नेकियां, तो ये पता है ये जो नेकियां है ना, ये ज्यादा बेहतर है अल्लाह के नजदीक, किस चीज में, किस चीज में अल्लाह के नजदीक ज्यादा बेहतर है, सवाब पाने में और अंजाम के एतबार से, क्योंकि ये बाकियात है ना, ये बाकी रहने और एवरलास्टिंग है, एवरलास्टिंग, ये खत्म नहीं होने, तो वहां पे भी जाके मिलेंगे इसका अजर, हम खाते पीते सोते जागते, हम जॉब पे जाते ये करते, सब चीजों ने खत्म हो जाना, हाँ एक दिन वो भी आएगा ना, ये फिक्र होगी बच्चे स्कूल गए कि नहीं, फलां बच्चा घर आया कि नहीं, हस्बैंड जॉब पे गए थे वहां पे सही पहुंचे कि नहीं, मैंने फलां पार्टी पे जाना है इसके लिए मेरे पास कपड़े हैं कि नहीं, शादी पर अटेंड करनी है इसको, किस दिन है, कहाँ जाना है, उसके लिए टिकट कराए कि नहीं, फलाने का क्या हाल है और फलां का क्या हाल है, जरा फोन करके पूछो, सब फिक्रें खत्म हो जानी, सब चीज ही खत्म हो जानी है, एक बाकी या तो सालेहात रह जानी है, जिन चीजों की हमें फिक्र आज ज्यादा है वो तो रहनी नहीं, और जिनकी फिक्र ही नहीं आज लगी हुई वो रह जानी, तो फिर खुद को इसमें क्यों ना इन्वेस्ट करें, इसमें क्यों ना खपाएं, अल्लाह ताला फरमा था ना, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना उसे तो खत्म हो जाना, जो अल्लाह के पास है यानी जो आपने अल्लाह के पास भेज दिया अपना सब कुछ, और जो अल्लाह के पास जन्नत है वो बाकी रहने वाली, सुभान अल्लाह, सवाब में भी और मरद्दा नतीजे के एतबार से, कॉन्सिक्वेंस आउटकम, यानी अपनी एनर्जी आप कहीं पे भी लगा देंगे ना वो चीज भी वो काम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नेकी में लगा देंगे वो बाकी रहेगी, तो इसलिए इंसान क्यों ना अपने आप को इन्वेस्ट करे इन चीजों में। आप देखिए हम तो नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें नमाजों के पढ़ने के बाद या कुरान पढ़ते हैं क्लासेस लेते हैं तो हमें ये हो जाता है अब इसके बाद तो मेरा कारोबार भी अच्छा हो जाना चाहिए, मैं जो कुरान पढ़ती हूँ तो मेरी जॉब भी बेहतरीन हो जानी चाहिए, मैं जो ये मैंने सदका किया तो मेरे बच्चों के रिश्ते भी बहुत अच्छे होने जाने चाहिए, ऐसे भी हो जाना चाहिए, इसका मतलब आखिरत पे ईमान कमजोर है। ठीक है नेक काम करने से आपके दुनिया के कामों को अल्लाह ताला संवार देता है, इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ताला पाकीजा बना देता है, लेकिन ये ना सोचे कि बल्ब ऐश आ जाते, ठीक है, असल ये बात है कि अल्लाह ताला पुरसकून कर देता है इस जिंदगी को, जब आप नमाज पढ़ते कुरान पढ़ते जिक्र अस्कार करते दुरूद पढ़ते, तो ये दुनिया में अल्लाह ताला इसका इस तरह से बदला दे देता है, लेकिन असल टारगेट ये नहीं होना चाहिए, असल टारगेट ये होना चाहिए कि जब मैं इस दुनिया से जा रही हूं ना, जब मेरी मैयत जब कब्र में उतारी जा रही हो ना, तो ये जो आज के मेरे किए हुए नेक अमाल है ना, उस वक्त ये मेरे काम आ जाए, उसके बाद मेरे साथ चले जाए कब्र में। आज का ये जो पढ़ना है ना, ये जो मैं इस वक्त कुरान के आगे बैठी हूँ पढ़ रही हूँ, आज की ये जो मेरी कोशिश है ना, आज का ये जो मेरा टाइम लगाना है ना, मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि ये उस वक्त जिस वक्त मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, तो ये मेरे लिए सिफारिश करने वाला बन जाए, मेरे साथ खड़ा हो। ये बाकियात तो सालेहात है, और ये तभी साथ जाएंगी जब ये खुलूस के साथ की जाए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए, वाह वाह के लिए ना की जाए, शोहरत के लिए ना की जाए। तो फिर ये लौटने के लिहाज से भी बेहतर, एक माना इसका ये भी है कि जब इंसान लौट रहा हो तो उसके साथ ही ये नेकियां भी जा रही हैं, तभी फायदा है ना, अगर यहीं रह गई तो क्या फायदा होगा। अब इसीलिए देखे ना आप, बाकी या तो सालेहात में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये सब बाकी या तो सालेहात है। इनसे क्या होता है, इनसे इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं, ऐसे झड़ते हैं कि जैसे फरमाया दरख्त के पत्ते झड़ते हैं ना, उस तरह से इससे इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं उसकी जिंदगी से। सुभान अल्लाह, सूखे पत्ते फॉल में खिजा में झड़ते हैं जैसे, तो कभी हम ये तस्मिया ये सोच के भी करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे गुनाह झड़ गए, कितने सारे मेरे गुनाह झड़ गए होंगे, चलो गुनाहों को झाड़ने के लिए आज एक तस्बीह कर लेते हैं, ये इस तरह से सोचते हैं। ये बाकियात तो सालेहात है, इन्होंने मेरे साथ जाना है, मैंने मर जाना है, मेरे ना बच्चे जाएंगे, ना मेरे कपड़े जाएंगे, ना मेरे जेवर जाएंगे, ना हस्बैंड, ना माँ बाप, कोई भी नहीं साथ जाना, तो मेरी बाकियात तो सालेहात नहीं जाना है, मैं अब बैठ के अपनी बाकियात तो सालेहात जमा करूँ। आपसे सलम ने फरमाया जो शख्स कुल हो अल्लाह, ये जो सूरह इखलास है 10 दफा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल तामीर कर देता है, महल मिल जाएगा, बाकी तो सालेहात है ना। तो हज़रत तो उमर फरमाते हैं फिर तो हम बहुत सारे महल बना लेंगे, हम तो इस काबिल भी ना हुए कि हम बहुत सारे महल ही बना लेते, तो इतनी अलग हदीस सुन के भी फिर भी नहीं हम करते, तो वो उन्होंने करनी थी ना, तो वो कहते हैं हम तो फिर बहुत सारे बना लेंगे। आपने जवाब दिया अल्लाह के पास कोई कमी नहीं, वो तो बहुत बेहतर देने वाला, और जो अल्लाह के रास्ते में 1,000 आयतें पढ़ ले, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसे अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालेहीन में लिख लेगा, तो सुभान अल्लाह, यानी एक दिन में 1,000 आयतें पढ़ ले कोई, तो ये बाकियात तो सालेहात बन जानी है। जैसे जो जिसके 3 बच्चे फौत हो गए, वो उसके ऊपर सबर करता है तो उसको उस आग भी नहीं छुएगी, मगर सिर्फ कसम पूरी होने तक के लिए, मतलब ऐसे कि बस आग को ऊपर से गुजर जाएगा, छुएगी नहीं उसको, उसके सबर की वजह से। तो ये बाकियात तो सालेहात हैं, वो मतलब ये बाकी रहने वाली नेकियां हैं ना, और भी बेशुमार नेकियां हैं, जितनी भी आप नेकियां करें, जितनी भी आपने जो कुछ भी किया अल्लाह की खातिर इसको राजी करने के लिए, वो बाकी रह जाएंगी और वो बेहतर हैं इन उन सब चीजों से जो कि हम जमा करते हैं, जिन पे हम अपना वक्त लगा रहे हैं, जिन पे हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जिनके लिए पीछे हम खपते फिर रहे हैं। तो दिल का सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, वो भी है आखिरत में, इतना कुछ मिलेगा कि इंसान सोच ही नहीं सकता। तो जो अल्लाह को राजी करना चाहता है ना, तो बाकियात तो सालेहात में अपना वक्त लगाए, वो बेहतर है अल्लाह के नजदीक, यानी अल्लाह उनसे बहुत खुश होता है। आपके पैसा कमाने से, आपके ये करने से कोई, या आप बहुत मालदार हो गई, आपने बड़ा खूबसूरत घर बना लिया, इससे कोई नहीं अल्लाह ताला खुश हो रहा, आपकी बाकियात तो सालेहात से खुश होना है उसने। कफर भी आया थी ना, क्या भला देखा तुमने उस आदमी को जिसने कुफर किया हमारी आयात के साथ, वकाल लऊतैन्न मालम वलदा, और उसने कहा कि मैं तो अलबत्ता जरूर दिया जाऊंगा माल और औलाद, और अगली आयत भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, अतला लगैबा, क्या उसको गैब की इतला मिल गई, अम इत्तखज़ इंदर रहमानी अहदा, या उसने रहमान से कोई अहद लिया हुआ, एक तो ये खास कॉन्टेक्स्ट में आई, उसके अलावा भी फिर देखिए एक खसूसी भी कॉन्टेक्स्ट होता है किसी आयत का, और एक अमूमी भी होता है, जनरल भी होता है माना। तो खास माना तो ये खब्बाब बिन अरत जो थे ना, वो पता है गुलाम थे, वो लोहार का काम करते थे, तो उन्होंने किसी के पास मजदूरी की, कहते हैं उसका फिर कर्ज, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसका कर्ज, उसके जिम्मे कर्ज था इनका, उससे पैसे मांगते रहते थे, जाते थे उसके पास, तो वो नहीं देता था। ये एक दिन कहता है कि मैं तेरे कर्ज को उस वक्त दूंगा जबकि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी से निकल जाए, उनका इनकार करते। तो हालांकि एक गुलाम है, वो सोचेंगे उनको कितनी ही पैसों की जरूरत होगी, पता नहीं कितने मजबूर होंगे, कुछ गुलाम बेचारे तो गरीब ही होते थे। आज तो पता हमें चल जाए कि जी जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन जॉब के लिए आपको ये करना होगा, इस्लाम के हटने की कोई बात हो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की कोई बात हो, तो कहते हैं हाँ अल्लाह को हुक्म तो बाद में मान लेंगे, कोई बात नहीं है, जॉब ना चली जाए ना, क्या करूं फिर, जॉब की रिक्वायरमेंट है ना ये, जॉब कहती है नमाजी नहीं पढ़ सकते, आप नमाजों के लिए जा ही नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखिए जॉब है ना, यानी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उनके लिए तो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, अंदाजा करें ना, गरीब आदमी है, उसकी मजदूरी देनी है, तंग कर रहा है, एक आदमी नहीं दे रहा, तो बोलना ही है ना, तो भी कह देते मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ पैसे लेके, तो उसके बाद फिर कह दूंगा मुझे क्या। लेकिन ईमान सोचिए सुभान अल्लाह, उनके कैसे मजबूत थे। तो आगे से क्या कहती है कि मैं तो ये कुफर कह ही नहीं सकता, तू मर के दोबारा जिंदा भी हो जाए ना तब भी नहीं मैं कहूँ। तो उस आगे से उस काफिर ने कहा, आस बिन वाइल ने, कि अच्छा फिर यही जवाब रहा, जब मैं मरने के बाद जिंदा हो जाऊंगा ना, फिर तुझे दे दूंगा तेरा माल, वहां पे तो मेरे पास जरूर ही माल भी होगा, औलाद भी होगी, जाहिर है जैसे यहाँ है, तो वहां तू भी इसी हालत में ही होगा जैसे आज है। इतनी तजहीक करते थे, इतना जलील करते थे, इतना हकीर जानते थे कि और गुमान इतना, अपनी खुशफहमी इतनी ज्यादा थी कि आज अगर मेरे पास माल और औलाद है तो वहां पे भी तो होगी, और तुम तो वहां पे भी फकीर ही होगे, तो वहां जाके तेरी पेमेंट कर दूंगा। इस पे ये आयत उतरी है बुखारी और मुस्लिम में। अल्लाह अकबर, मैं सोचती हूँ उनके ईमान भी कैसे थे वैसे ना, आप अंदाजा कीजिए, आपको जॉब की बेहद जरूरत हो, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो, लेकिन वो जॉब वाले कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट रखते हो, आप कितनी दफा कहेंगे कि नहीं जो मर्जी हो जाए, ना ये नहीं करूंगी जॉब, अल्लाह और दे दे, नहीं ना, हम तो मरते फिरते हैं, हम कहते थे ना अल्लाह के हुक्म बाद में पूरे हो जाएंगे, ये चीजें नहीं मैं छोड़ सकती। देखना हम एक्चुअली ना ये वाकयात ना हमारे, हमें कंपैरिजन बताते हैं कि हम अपने ईमान के साथ कंपेयर करें और अपने ईमान को अपलिफ्ट करें, हमने भी इस लेवल तक जाना है, हमारा ईमान ऐसा तो नहीं लो लेवल पे होना चाहिए, इस लेवल का ईमान होना चाहिए हमारे पास। अच्छा तो उसने कहा कि मैं तो का ये बात आए ना यहाँ पे, वकाला लऊतैन्ना मालम वला था, मैं तो दिया जाऊंगा जरूर ही, इतना यकीन है उसको, मैं तो मेरे पास तो वहां पे भी होगा, वहां पे दे दूंगा। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, क्यों ये क्या गैब देखा है, यहाँ अल्लाह ताला ने इसके साथ कोई अहद किया हुआ है, कोई प्रॉमिस किया हुआ है जिसकी बेस के ऊपर इसको मिलेगा ये सब कुछ, कल्ला हरगिज नहीं, सनक्तुबुमा यकूल, हमने लिख लेंगे हम, हमने लिख लिया जो ये वो कहता है, वरना मुद्दू लहू मिनल आदा भी मद्दा, और हम लंबा करेंगे उसके लिए अजाब में से लंबा करना, यानी जैसे ढील अल्लाह लंबी करता है ना, इसी तरह फिर वहां पे अजाब भी लंबा कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। वो ये कहता है कि मेरे पास माल है और वो और मैं वहां पे जाके दूंगा, हरगिज नहीं, इसकी इन बातों को अल्लाह ने लिख दिया, और अजाब भी वहां पे लंबा ही होगा, वह नारिफुहू, और हम वारिस हो जाएंगे इसके, मा यकूल जो वो कहता है, जो ये कहता है ना माल और औलाद और ये सब कुछ, ये जितनी चीजें इंसान के पास है ना, ये चंद दिन की है ना, चंद दिन के लिए अल्लाह ताला ने दिया हुआ, इंसान समझने लगता पता नहीं हमेशा के लिए मिल गया, तो अल्लाह ताला जब चाहे जैसे चाहे जिस वक्त चाहे वापस ले ले, जितना चाहे वापस ले ले, जितना चाहे दिए रखे। आप देखते हैं लोगों को एक दिन इतने मालदार होते हैं, अगले दिन सड़कों पे आ जाते हैं, तो पता चलता है ना, अगर अपना होता तो क्यों ना अपने पास रहता, इसका मतलब अपना कुछ नहीं है, तो तो वो उसको बड़ा था, मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरी औलाद और मेरा पैसा माल, मेरे साथी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वयतीना फरदा, और हमारे पास आएगा अकेला। मैंने आपको बताया ना यौमा फिर मरुना खीबा भी, अभी वो उस दिन तो इंसान भागेगा इनसे, अकेला अल्लाह के पास आना होगा। हालांकि कितनी मखलूक खड़ी होगी कि अव्वल से लेके आदम अलैहि सलाम से लेके आखिरी आदमी तक मैदाने हशर में मौजूद होगा, फिर भी इंसान अकेला। कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई साथी, कोई संगी, कोई हमदर्द, कोई 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 लीडर, कोई कोई जिनके पीछे दुनिया में इतनी इतनी अपनी जानें खपाते फिरते थे, कोई तो आ जाता, कोई तो साथ देने के लिए खड़ा हो जाता। चलो नहीं सजा भुगत सकते, साथ ही देने के लिए, सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए। नहीं, बिल्कुल ही अकेला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज के वारिस तो हम हैं, हमारे पास ही वापस आ जानी है। इंसान किधर लेकर चला जाएगा? कोई इंसान ले जाता हुआ देखा कि वो अपनी कब्र के अंदर अपने प्लॉट और अपने पैसे और अपने घर और अपनी गाड़ियां सारी लेके कब्र के अंदर चला जाए? नहीं ना, उसके ऊपर ही छोड़ के चला जाता है। हसारों को अपने खाली हाथ ही जाते देखा। ओ भाई खाली हाथ तो इतनी हद तक बात है कि ये जरा से को गोल्ड या किसी ने कुछ पहना हो, वो भी काट काट के, उतर नहीं रहा ना, काट काट के उतार लेते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं साथ ले जा सकता, तो छोड़ गया ना सब। फिर जिनके लिए छोड़ गया वो भी छोड़ जाते हैं, फिर जिनके लिए छोड़ गया वो भी छोड़ जाते हैं। तो कफन में तो कोई जेब नहीं होती, और कपड़े तक अच्छे तो पहन के नहीं जाते कि कोई बड़े फैशनेबल कपड़े पहन के चले जाए, कोई बड़े गोटे किनारी वाले कपड़े पहन के चले जाए, मेकअप भी नहीं करके जाते, जेवर भी नहीं पहन के जाते। अल्लाह हू अकबर। तो सब कुछ ही फिर अल्लाह ही का है, और वापस उसी के पास चले जाना। इंसान यहीं पर धोखा खा जाता है, और उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं जो मेरे पास आज है ऐसे ही रहेगा, और ये मेरे पास जुबान है ना, मैं जो मर्जी चाहे बोलू, मेरे पास आंखें हैं, मैं जो मर्जी चाहे देखू, मेरी आंखें, मेरे पास ये कान है, मैं जो मर्जी चाहे सुनू, मेरे कान है, और ये मेरी बॉडी है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पीऊं, जो जब मर्जी सोऊं, मेरा इख्तियार है। बड़ा धोखे में है इंसान। यही आंखें फिर होती हैं, यही कान होते हैं, यही जुबान होती है ना, देख ले मैयत की जाके, यही होती है ना। क्यों नहीं बोलती अब, क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं उठ के खड़ा हो जाता, क्यों नहीं कहता मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैंने नहीं मरना, मुझे किधर ले जा रहे हो, किस कब्र में डाल रहे हो, मैंने नहीं जाना, क्यों नहीं कहता? बच जाता ना मौत से, बच जाए ना कब्र से, भाग जाए ना, क्यों मौत के आगे हार गया? इसलिए कि ये जिंदगी इसकी नहीं थी, ये आंखें इसकी नहीं थी, ये पैर इसके नहीं थे, ये जुबान इसकी नहीं थी, ये तो अल्लाह ने अमानतन दी हुई थी। कैसे फिर उस वक्त बेबसी की तस्वीर बने पड़ा होता है, बिल्कुल बेबस, कितना धोखे में रहा। जितनी देर ये सांस चल रही है ना, उतनी देर ये धोखा है। यूं ही सांस खत्म होती है, सारा धोखा ठीक उड़ जाएगा, ये नशा, ये जो है ना, मैं जब चाहूं जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी, मर्जियां सब खत्म हो जाने। अल्लाह अकबर। सोच ले बोलने तक का तो इख्तियार रहता नहीं है, कुछ और क्या करना, इतनी जुबान छोटी सी चीज है ना, इतनी भी नहीं चला सकता, इतनी भी छिन जाती है, बिल्कुल बेख्तियार हो जाता है जो कल तक इख्तियार का मालिक था। ये समझ आती ही नहीं हमें, क्या करें। अल्लाह अकबर। तो फिर अकेले ही आना होगा, वही अतीना फरदा, फिर हमारे पास वो आएगा अकेला ही। वत्तखजू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा कुछ आलिहा, लियकूनु लहुम इज्जा, कि उनके लिए इज्जत के बायस हो जाए। इज्जा का मतलब गलबा भी है, मदद भी है, इज्जत भी है, कि ये हमारे मददगार हो जाए, हमारे लिए गलबे का बायस बन जाए। ये अल्लाह के अलावा और बनाते हैं ना उनको, अपने इला बनाते हैं, इनके थ्रू हमें इज्जत मिल जाए, इनके थ्रू हमें पावर मिल जाए। ये चाहने के लिए वो इनको, इनकी इबादत करते हैं। कल्ला हरगिज नहीं, सयकफुरून भी इबादत ही व यकूनून अलैहिम जिद्दा, हरगिज नहीं, अनकरीब वो इनकी इबादत के भी इनकारी हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारी क्या तुम इबादत करते थे, इनकार करेंगे। आपने देखा नहीं सूरह मायदा के 8 में हम पढ़ चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी गए, अल्लाह ताला फरमाया ईसा क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इला बनाओ? कहेंगे हरगिज़ नहीं अल्लाह, मैंने तो नहीं कहा, मैं नहीं जानता ये क्या करते रहे मेरे पीछे से, इन तो आजिब हूं इन्हों में बाद, अगर तूने इनको अजाब देना तो दे दे, ये तेरे ही बंदे, मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं नहीं इनका जिम्मेदार, तो वो ही इनके मुखालिफ हो जाएंगे। अगर ईसा अलैहि सलाम ये करेंगे तो बाकी होगा क्या कहना, जो अपनी जान छुड़ाते फिर रहे होंगे वो क्या खातिर में लाएंगे? अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अल काफिरीन तअज्जुहुम अज्जा, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने छोड़ रखा है शैतानों को काफरों पर, उभारते हैं उनको, उभारना यानी मैंने आपको बताया ना पहले वर्ब आया फिर मस्दर आ गया ना, यानी उसके अंदर ना बहुत एग्जेजुरेशन आ जाती है, यानी इतना उनको जोश दिलाते हैं, इतना अज्जा मतलब होता है हंडी का उबाल, उनको ना इंस्टिगेट करते हैं कि करो ये काम करो ये काम, यानी इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आपसे सलम के खिलाफ, इस तरह से ऐसे ये शैतान हमने छोड़ रखे हैं, यानी इनको भेज दिया है, इनको छोड़ा हुआ है इनके ऊपर कि वो जाए, अब जाए, ये इनको ढील दी हुई है ना अल्लाह तआला ने शैतान को, उस जब उस आपको वो स्टोरी पता है, हम पढ़ चुके हैं सूरह आराफ में, कि जब अल्लाह तआला से इसने मोहलत मांगी थी तो अल्लाह तआला ने इसको क्यामत तक मोहलत दे दी हुई है, तो इसने तो वादा किया था कि मैं सीधे रास्ते से इनको बहकाऊंगा, ये अब इंसान के अंदर जहां से हवा जहां तक हवा जा सकती है ना, ये भी वहीं दाखिल हो जाता है, इसीलिए तो फरमाया कि खून की तरह गर्दिश करता है इंसान के जिस्म में, इंसान के अंदर दौड़ता है, तो आप इसी वजह से देखते हैं ना बैठे बैठे किसी को पता नहीं क्या तकलीफ होती है, कि एक दिन वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं कुरान को जलाने लगा, एक दिन बैठे बैठे अल्लाह जाने क्या होता है, कहते हैं कार्टून बनाने शुरू जाता है आपसे, क्या ये मसला है? मसला ये कि शैतान इनके ऊपर लूज छोड़े हुए हैं अल्लाह ताला, इस्लामोफोबिया क्या है, ये शैतान है इनको इंस्टिगेट करते उभारते हैं इनको, कहते हैं कि तू कर रहा आ गया से, बाज मुसलमान सोचते हैं हम पता नहीं अपना सॉफ्ट इमेज देंगे ना तो हमें फिर ये कितने एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मॉडर्न हो जाते हैं अपने दीन को ही छोड़ देते हैं ताकि ये जो है ना इस्लामोफोबिया खत्म हो जाए और ताकि ये हमें अच्छा समझने लगे, या आज सोचते हैं कि भाई हम ये मसलन आप अगर इंडिया में रहते हैं तो हम ये अगर हिंदुओं के इनके फेस्टिवल्स के अंदर इसमें हिस्सा लेंगे, इनके उसके ऊपर हम भी कुछ पैसे दे देंगे इनको जो ये अपनी पूजा वगैरह करते हैं और ये करते हैं, तो पता नहीं ये हमें अच्छा समझने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। लन तरदा अंकल यहूद व नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये यहूद व नसारा तुमसे कभी राजी नहीं होंगे जब तक तुम इनकी मिल्लत में ना आ जाओ, इसी तरह बाकी काफिर भी वो तो नहीं आपसे राजी होंगे, देते रहे उनको पैसे, कोई अपनी जमीन दे रहा है, कोई अपने उनके फेस्टिवल्स में हिस्सा ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनके बुत के आगे ही जो है ना वो भी चढ़ावा ऐसे ही प्लेट को ऊपर नीचे जो वो करते हैं क्या पता नहीं जो भी इसको कहते होंगे उसको करता है, वो उसी तरह ये कर रहे हैं कि ये खुश हो जाए हमसे, इनके ऊपर तो शैतान आए हुए हैं जो इनको इंस्टिगेट करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये आप करो ये आप कर दो, आपको उसी औरतें बुरके के साथ आ रही हैं तो इनको ना कॉलेज जाने दो, ये क्या है, इसके पीछे शैतान है ना, मगर बंदा सोचता है ना कि इनको क्या हो गया, अरसे से रह रहे थे इन्होंने आप क्या ये शुरू कर दिया, तो ये शैतान अपना खेल खेलते हैं और ये शैतानों के हाथों में खेल जाते हैं, और उस वक्त भी ऐसा ही था, और आज हम सोचते हैं ना कि आज बड़ा मुश्किल है, आज बड़ा मुश्किल, ये वक्त बड़ा मुश्किल, ये जमाना ऐसा, इसमें तो ऐसा, अल्लाह की कसम पहले जमाने कोई कम नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो मसाइब जो जुल्म अगर आप पढ़ लेना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते, हजरत सुमैया की शहादत का पढ़ ले तो आपको कई दिन नींद नहीं आती कि क्या उनके साथ हुआ था, क्या क्या मजालिम उन गुलामों लौंडियों उनके साथ किए जा रहे थे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा आज, लेकिन हम ही बहुत नाजुक हो गए और हमारी कमिटमेंट अपने दीन के साथ नहीं रही उस तरह से, उन्होंने इतने मजालिम सह के भी अहद अहद कहना ना छोड़ा, और हमें गरम लू भी चल जाए तो हमें हाय पता नहीं हम इस दीन की वजह से, उतारो हिजाब बदलो नाम छोड़ो ये दीन इसकी वजह से मुसीबतें, हमारा तो यह हाल है कि बस इतनी सी बात को भी किसी के माथे पे तेवरी आ जाए ना हमें देख के किसी काफिर के, तो हमें वो भी इतना वो लगता है, हम इतने डर जाते हैं, इतने डरपोक। मुसलमान तो डरता नहीं सिवाय अल्लाह के, वो तो नहीं किसी से डरता, उसका ईमान है जो उसको स्ट्रांग करता है, ये नहीं कि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, उसका ईमान है जो उसको स्ट्रांग करता है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है, उससे ज्यादा जिगरे वाला तो कोई हो नहीं सकता, उससे ज्यादा दलेर, उससे ज्यादा बहादुर नहीं कोई हो सकता, उसका ईमान उसको बहादुर बनाता है, तो कमी कहाँ आई फिर, ईमान में कमी आई, जो आज भिकमंगों की तरह हम उनको राजी करने के लिए कि हम आपको देते हैं। अच्छा आप अपनी, मुझे किसी ने पूछा क्या, मुझे वर्ड भी नहीं पता, उसने कहा ये क्या अलाउड है इसके अंदर पैसे देना, मैंने कहा ये क्या चीज है, तो उन्होंने कहा ये वो है कि जो उनके हिंदुओं के फेस्टिवल है उसके अंदर वो अपने बुतों को लेकर जाते हैं, क्या पता नहीं क्या चीज उसका नाम था, तो उसके ऊपर हम दे सकते हैं पैसे बाद में अगर हम तौबा कर लें इसलिए ताकि वो हमें एक्सेप्ट कर लें, पर हमें कुछ कहे ना, यानी ये हाल आ गया हमारा आज, हमारा हम इस हद तक आ गए कि हमसे खुश हो जाए, आपका मतलब है आप उनको पैसे देंगे वो आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे वो राजी हो जाएंगे, अल्लाह अकबर। और एंड में हाल ये होगा कि ना वो राजी होंगे और अल्लाह को भी नाराज कर लिया, तो जाओगे किधर फिर, किधर, कौन सी जमीन तुम्हें पनाह देगी, कौन सा आसमान तुम्हें अपने नीचे लेगा। तो इस भूल में ना रहना कि ये हमसे राजी ही हो जाएंगे, अनलेस ये है कि उनका ही दीन अपना लो, उस ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उनको राजी करने के लिए। फला ताजल अलैहिम, तो ना आप जल्दी करें इन पर, इन्नमा नअद्दु लहुम अद्दा, हम गिन गिन के रख रहे हैं उनके लिए गिनना, आप जल्दी ना करें कि अल्लाह इनका काम क्यों नहीं तमाम हो जाता, अल्लाह ये हम तो हक पे हैं, ये तो बातिल हैं, या अल्लाह इनको सजा क्यों नहीं मिल जाती। इंसान इतना फ्रस्ट्रेट होने लगता है, इंसान कहता है हाय इनकी पकड़ क्यों नहीं हो रही, अल्लाह तू ही इनको पकड़ लेना। तो जब ऐसे आप देखते ना इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो फिर आपको ना अंदर से शेक होने लगते हैं, और ना इंसान के उस वक्त भी ईमान का पता चलता है जब उस वक्त जब इंसान ऐसे हालात को देखता है कि इस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, उनके पास जुल्म हो रही है, वो कहते हैं हाय इनको तो कोई पकड़ ही नहीं रहा, तो पता नहीं उसका ईमान अंदर से कमजोर होने लगा, कहाँ है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह की मदद, फिर वो ऐसे कहने लगता है। जब ऐसे करता है और उसको जल्दी होती है कि जल्दी ऐसे इन बस हम देखें कि इनके ऊपर अजाब आ जाए, हम देखेंगे इनको सजाएं मिल रही है, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, ये तबाह हो जाए, हम ये चाहते हैं, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं फला ताजला नहीं है। थोड़ा सा ना आप उस टाइम में ना जरा जाके देखा करें, जिस वक्त ऐसे मसाइब आप देखते ना फौरन एकदम जजमेंटल ना हो जाए करें, ये सूरतें हमें यही तो बताती हैं, ये फौरन ये सोचना लिया करें कि फिर अल्लाह की मदद कहाँ है, फिर हमारा तो कोई है ही नहीं, फिर अल्लाह ताला कहाँ है, फिर हमें तो उसने छोड़ दिया, फिर ईमान ही बाज लोग अपना लूज कर देते हैं। नहीं देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोगों ने कैसे मसाइब सहे थे, और अल्लाह ताला ने फरमाया आप जल्दी ना करें इन पर, वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, तो काफिर दर्दनाते फिरते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनका डंका बज रहा था, वो जुल्म की इंतहाएं कर रहे थे, और आप सल्लम को कहा जा रहा है आप जल्दी ना कीजिए। नहीं हत्ता के एक साहबी आप सरसरा काबे के साथ टेक लगाए हुए बैठे हुए थे, तो एक साहबी आए फरमाया मता रसूलुल्लाह कब आएगी, या रसूल अल्लाह की मदद कब आएगी, हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई, तो आप सल्लम ने क्या फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होके आगे होके बैठ गए, और आपने फरमाया तुमसे पहले लोगों पे तो इससे भी ज्यादा मसाइब आए, उनके जिस्मों को लोहे की कंघियों से नोच दिया गया, लोहे की कंघियां लेके ना जिस्म के अंदर रख के गोश्त के अंदर, और पूरी कंघियां चलाएंगे कि रेशा रेशा हो जाए, उनके सर रख के बीच में से आरे रख के काट दिए गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के कलमे को ना छोड़ा। मुझे बताएं मैं और आप क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने, ये बस जरा सी बात होती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम फौरन कहने लगते हैं कहाँ हो गया, आए हो गया, आए हम तो लुट गए मारे गए, हमारे तो पता नहीं अजाब के इंतहा हो गए, सबर कहाँ गया हमारा, दलेरी कहाँ गई हमारी, जुर्रत कहाँ गई हमारी, हमारा ईमान? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम क्यों जल्दी करते हो? हमने इनके लिए इनके हर काम को, हर बोल को, हर बात को, हर इशारे को हमने गिन गिन के रखा है। इनकी एक एक सांस को अल्लाह ने गिना हुआ है, एक एक सांस को। क्यों डिसहार्ट होते हो? क्यों जल्दी मचाते हो कि क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता अल्लाह का फैसला, क्यों नहीं अल्लाह इनको पकड़ता? क्यों? वहां पे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और सहाबा थे, उनकी दुआएं थी, फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया जल्दी मत करो। और यहाँ पे तो हमारे जैसे हैं जिनके पहले ही अमल ही कुछ नहीं, तो क्या आएगी अल्लाह की मदद? तो अल्लाह ताला ने गिन रखा है, गिन रखा है, फिक्र ना करो, उसके पास सारा रिकॉर्ड है। यौम नाशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा, तुम मुत्तकीन की शान उस दिन देखोगे जिस दिन उनको रहमान की तरफ ले जाया जा रहा होगा, जमा किया जा रहा होगा। कैसे? वफदा। हम कहते हैं ना फला मुल्क का डेलीगेशन आया हुआ, उनका वफद आया हुआ। तो जब किसी जगह के वफद आते हैं तो कैसे उनके रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं, फूल फेंक रहे होते हैं। ये तो दुनिया के प्रोटोकॉल हैं। जब वो रहमान की तरफ ले जाए भी जा रहे होंगे ना तो उनकी शान ही अलग होगी। लेकिन मुत्तकीन की याद रखिए, फिर बात वही तकवा पे आ गई। और फिर सोच ले मैंने आपको क्या बताया तकवा के बारे में। अल्लाह अकबर, कई ऊंटनियों के ऊपर सवार होंगे, उनकी शान होगी, गर्दनें ऊंची लंबी होंगी, वो कैसे शान से ले जाए जा रहे होंगे, उनकी क्या इज्जतें हो रही होंगी। वह नसूकुल मुजरिमीना, और ये हांक के ले जाए, जैसे हांका जाता है ना जानवर को, डंडे मार मार कर उनको हांक के इधर को उधर को लेकर जाए, इनको हांक के ले जाया जा रहा होगा जहन्नुम की तरफ। वीरदा। अब अभी मैंने आपको वरूद का बताया ना, इसके माने बताए, तो एक माना प्यास भी है, प्यासे होंगे, इनको हांका ले जाया जा रहा होगा जहन्नुम के गेट्स की तरफ। वहां पहुंचा के वहां पे आगे वो जहन्नुम के दारोगों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनको ले जाया जाना है ना वो भी कोई इज्जत से नहीं होगा, हांक के ले जाया जा रहा होगा। वो सोचे जैसे मुजरिमों को बांध के ले जाया जाता है चेन्स के अंदर, पीछे से उनको डंडे भी मारते हैं और कहते हैं चलो सीधे होके चलो, कैसी जिल्लत है। और मोमिनों को तसल्ली दी जा रही है कि तुम फिक्र ना करो, क्यों जल्दी करते, तुम देखना वहां का ऑनर क्या होगा। देखिए एक मेहमान में और एक मुजरिम में तो बहुत फर्क है ना। एक मेहमान की आप कैसी, दुनिया में भी हम मेहमानों की कैसी इज्जत करते हैं, जितनी भी हमारी इस्तात होती है, हम चाहे गरीब बंदा भी हो फिर भी वो अपनी इस्तात के मुताबिक मेहमान को इज्जत देता है। तो रब के जो मेहमान हो, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको कैसी इज्जत से नवाजेगा, ये तो उस दिन पता चल। और मुजरिमों का क्या हाल हो रहा होगा। और ला यमलिकून शफात, नहीं मालिक होंगे सिफारिश के, इन्होंने ना खुद की, खुद तो किसी की सिफारिश कर ही नहीं सकते, इनके लिए भी कोई सिफारिश नहीं करेगा। शिफात है मगर इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, मगर उसके लिए जिसके लिए रहमान ने बना लिया कोई अहद, कोई रहमान के पास उसका कोई अहद था, रहमान से उसने कोई अहद किया हुआ था। क्या अहद? यानी तौहीद, शिर्क से बेजारी, शिर्क नहीं कभी किया था, तौहीद पे था, जिसने तौहीद पे जिंदगी गुजारी, जिसने जितनी जिंदगी गुजारी वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारी, तो फिर तो उसके लिए सिफारिश है, ये अहद है ना। अल्लाह ताला फिर अल्लाह का क्या अहद है बताएं, कि जो मेरे बंदे होंगे। देखिए वो वाली हदीस को याद करते हैं, मुआज बिन जबल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेज रहे थे ना, तो आपने फरमाया मुआज अल्लाह का बंदों पे हक क्या है और बंदों का अल्लाह पे क्या हक है। तो हजरत मुआज फरमाते हैं अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज अल्लाह का बंदों पे हक बताए क्या है, वो ये है कि सिर्फ उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और फिर बंदों का क्या हक बन जाता है, ये बंदे नहीं अपना हक खुद कह रहे, ये अल्लाह ताला ने ही खुद फरमाया है कि फिर बंदों का मेरे ऊपर हक ये है, बंदों का अल्लाह पे हक। हालांकि बंदों का अल्लाह पे कभी हक हो ही नहीं सकता, लेकिन ये अल्लाह ताला ने ऑनर दिया। फिर जो ऐसा करेगा ना कि अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं करेगा, फिर बंदे का, उस बंदे का अल्लाह पे हक हो जाता है कि अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं देगा, अजाब नहीं देगा। तो अल्लाह ताला ने अहद किया हुआ कि अल्लाह अपने बंदों को रुसवा नहीं करेगा, ये अल्लाह का अहद है जो उसके आगे सबमिट कर देते हैं, जो उसके बंदे बन के रहते हैं। उफी भी आहदी, औफू भी आहदी, उफी भी आहदी को, तुम अहद पूरा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ अहद पूरा करेगा। तुम पहले अहद पूरा करके दिखाओ, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, उसकी इताअत करो, उसके फरमा बरदार बन के रहो, तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ अहद को नहीं तोड़ेगा, वो भी तुम्हें रुसवा नहीं करेगा। तो लिहाजा उस दिन कोई क्यों इन ऐसे मुजरिमों के, कौन ये दुनिया में भी कोई मुजरिम हो, कोई बागी हो, कोई मसलन ऐसा बंदा हो जिसने किसी मुल्क में गद्दारी की हो, तो उस गद्दार का कोई भी सिफारशी नहीं बनता। कहता मैं क्यों अपनी जान फंसाऊं, कहता कि मैं क्यों अपने, कोई टेररिस्ट हो उसके लिए कोई सिफारिश करने खड़ा होगा, वो कहेगा है मुझे ही ना पकड़ ले, कोई भी नहीं खड़ा होगा। तो वो ये अल्लाह के मुजरिम है, इनके लिए कौन सिफारिश करेगा, ना ये खुद अपने लिए कोई सिफारिश कर सकते हैं। हाँ सिफारिश होगी मगर इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमान, ये एक्सेप्शन है, जिसका रहमान के पास कोई अहद होगा तो उस अहद को पूरा करना है।